सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अली अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम नदीम।
ये जो आप मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि पंजाब एजुकेशन ऑर्डिनेंस जो नहीं आई है 2015 की, इसको डिस्कस करके पहले पढ़ने से बताइए जरा थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री पे एजुकेशन का, बताइए ये प्राइवेट स्कूल क्या है, कहाँ से आए, कैसे कर।
देखें नदीम, इस पर जो सर्ट ऑफ क्लासिक पीस है वो तो इट्स कॉल्ड द लीप्स रिपोर्ट जो आसिम ख्वाजा ताहिर अंदराबी और विष्णु दास ने की थी, वो पंजाब के एजुकेशन के बारे में ज़्यादा है, तो मैं उस उन्हीं की मिसाल और उनका जो तहकीकात हैं उनको इस्तेमाल करूँगा। तो उसमें ये नज़र आता है कि जो मैथ्स एजुकेशन आई पाकिस्तान में वो 1970 के बाद है, उससे पहले हमारी काफ़ी एक इलीट एजुकेशनल सिस्टम था। जब मैथ्स एजुकेशन शुरू में आई तो वो ज़्यादातर स्टेट लेड एजुकेशन थी, बट हमें ये पता है 1970-80 के अंदर जो डिमांड फॉर एजुकेशन थी हर किस्म के तबके में, ना सिर्फ अपर क्लासेस में मिडिल क्लासेस में, बट जो लोअर क्लासेस थी पोअर लोग भी थे उनके अंदर डिमांड फॉर एजुकेशन बहुत बढ़नी शुरू हो गई। 80s के अंदर एक बहुत मैसिव स्टेट एक्सपेंशन स्कूलिंग की शुरू हुई, जो लड़कियों के स्कूल्स भी थे और लड़कों के स्कूल भी थे प्राइमरी लेवल पे, लेकिन वो भी जिस स्केल से डिमांड बढ़ रही थी उसका एक फ्रैक्शन ही स्टेट जो है वो सप्लाई कर पाए। उसके बाद ये हुआ कि 1990s में एक बड़ी मैसिव मशरूमिंग शुरू हुई प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की, और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की जो मशरूमिंग शुरू हुई वो ये नहीं थी कि एचएसएन कॉलेजेस और कराची ग्रामर स्कूल और सेंट एंटनीज और कैथीड्रल स्कूल्स और बीकन हाउसेस या नकासेस ऑफ द वर्ल्ड, वो हर किस्म की प्राइस का स्कूल बनना शुरू हो गया। तो गलियों गलियों मोहल्लों में गांवों में पर्टिकुलरली पंजाब और जो सदर्न केपी है उसके अंदर बहुत बड़ी और शहरों में पूरे पाकिस्तान की बहुत बड़ी मशरूमिंग शुरू हुई। तो एक बड़ी वाइब्रेंट मार्केट डेवलप हो गई और उसका एक बड़ा तेज रिस्पांस था। तो अब सूरत हाल पंजाब की है,
आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हमारा वो परसेप्शन है जो हमारा तसव्वुर है कि सिर्फ बीकन हाउस ग्रामर स्कूल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कस्बों में छोटे छोटे मोहल्लों में स्कूल है।
जी बिल्कुल, इस वक्त सिचुएशन ये है, अभी मेरी रिसेंटली किसी जगह पे एजुकेशन की ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग हुई थी और उनसे ये पता लगा कि बेसिकली इस वक्त तकरीबन 40-45% के दरमियान जो एनरोलमेंट है वो प्राइवेट स्कूल्स की खपत हो रही है। वो बेसिकली हकूमती स्कूल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। और एक मैं बात कह दूं कि जो 18th अमेंडमेंट थी उसमें फिर हमने एक अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन की जिसने स्टेट ने ये जिम्मेदारी ली कि वो 16 साल सब सबको एजुकेट करे। अब वो जो 25A की कंप्लायंस है, अगर आज जाके प्राइवेट सेक्टर को हम बंद कर देते हैं तो वो तो किसी सूरत में, ये तो एक तरीका है देखने का कि ये जो राइट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने सेट किया है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अगर फुलफिल होगा तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कोऑपरेशन से होगा। एक मैं और पॉइंट कहना चाहता हूँ कि इस मशरूमिंग से हुआ क्या, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस मशरूमिंग से ये हुआ है कि हर छोटे छोटे मोहल्ले में और काफ़ी ज़्यादा गाँव में, अपर सिंध लोअर पंजाब में, एक्चुअली अपर सिंध में शायद प्राइवेट स्कूल एजुकेशन की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, बट पंजाब में केपी में सिंध की अर्बन एरियाज में बलूचिस्तान क्वेटा वगैरह मोहल्लों में और गांवों में एक वाइब्रेंट मार्केट प्लेस एजुकेशन, उसका मतलब क्या है, ये मतलब समझना बहुत जरूरी। उसका मतलब ये है कि किसी भी इनकम के पेरेंट के पास अब चॉइस, उसके पास चॉइस सिर्फ ये नहीं है कि अपने बच्चे को वो सरकारी स्कूल में भेजे, बट वो 100, 150, 200, 250, 300 की फी पे अपना बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में भी भेज सकता है।
एक सेकंड, आप कह रहे हैं 100, 150, 300 का स्कूल?
जी,
मतलब वहाँ कुछ पढ़ाते नहीं है, सिर्फ मजाक होता है।
हाँ जी, तो इसमें भी लीप्स रिपोर्ट में उन्होंने जायजा लिया था कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो लर्निंग आउटकम्स उन्हीं महलों में, अगर पब्लिक सेक्टर के लर्निंग आउटकम्स आप कंपेयर करें प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो उनमें कितना फर्क आता है? तो प्राइवेट सेक्टर के लर्निंग आउटकम्स पब्लिक सेक्टर से बेहतर है,
कितने?
लेकिन मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट फर्क है. लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर के लर्निंग आउटकम्स जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे हैं. तो प्राइवेट सेक्टर स्टेट सेक्टर से बेहतर लर्निंग आउटकम्स दे रहा है, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो बहुत अच्छे लर्निंग. एक और मैं चीज इसमें ऐड करती हूँ, उससे पहले उसकी एक बहुत बड़ी वजह है. उसकी वजह ये है कि टीचर अटेंडेंस जो है प्राइवेट स्कूल्स में वो स्टेट स्कूल से बहुत बेहतर है. सो एक फर्क ये आ जाता है. सो जो टीचर्स इवन लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में हायर होती हैं वो लेस क्वालिफाइड होती हैं, लेस वेल पेड होती हैं. पब्लिक सेक्टर के टीचर्स ज्यादा बेहतर
होते हैं
और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ज्यादा क्वालिफाइड
आते हैं.
एक आते नहीं है, दूसरी जो लर्निंग आउटकम्स इम्पार्ट भी कर रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं कर रहे. तो एक इंसेंटिव्स का प्रॉब्लम. सो ये जो है, लेकिन अगर आप एक पेरेंट के लेवल से सोचें तो अब एक पेरेंट के पास अपनी लोकेलिटी में चॉइसेस है, यानी कि आप एक फ्री पब्लिक स्कूल में भी चूज कर सकते हैं और आप एक लो इनकम प्राइवेट स्कूल को भी चूज कर सकते हैं. तो इसकी वजह से हुआ यह है कि कंज्यूमर के अगर आप व्यू पॉइंट से देखें तो कंपटीशन आ गई. अब जो मैं वेट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं फ्री पब्लिक एजुकेशन लू या प्राइवेट एजुकेशन, और मैं ये वेटिंग जो है वो करता रहा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में चेंज आई है.
अच्छा ये बताइए जबान के लिहाज से, मैंने सुना है कि जो लो पेड स्कूल्स हैं इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल,
जी इनमें जो लो पेड स्कूल्स हैं ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और इस इनमें जो पेनिट्रेशन को एजुकेशन की है वो भी बहुत ज्यादा है. यानी क्या,
लड़की लड़के इकट्ठा पढ़ रहे हैं
पर्टिकुलरली 1-5 प्राइमरी.
बड़ी अच्छी बात है सुना सुना. आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फैल चुके, हम सिर्फ बड़े स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, छोटे स्कूल.
बिल्कुल.
नंबर दो, गरीब के पास ये अपॉर्चुनिटी है 100-200 रुपया के वो बच्चे को इन स्कूलों में खींच सके.
जी बिल्कुल.
नंबर तीन, कि ये स्कूलों में जो लिखाई पढ़ाई का निज़ाम है वो बेहतर है पब्लिक स्कूल से.
जी
हालांकि तक स्कूल के टीचर पब्लिक स्कूल में ज़्यादा महंगे हैं और ज़्यादा क्वालिफाइड है, बट फिर भी ये स्कूल में मेहनत करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, इनका निज़ाम बेहतर है.
लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट लेवल्स में देखें तो ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, अगर हम ग्लोबली या रीजनली कंपेयर करें तो ये सारे ऐसे, मतलब अगर 100 में से मार्क्स आ रहे हैं तो इन स्कूल्स के भी बच्चे, जो औसतन बच्चा है वो 40-45 मार्क ही लेगा. तो ये नहीं है कि वो 60-70 मार्क
पाए. दुनिया में क्या होगा, एवरेज 60-70 होगा, 80
जी, समथिंग लाइक दैट, कि 50-55 होगा.
तो हमारे जनरली स्कूल पीछे
हैं. लेकिन तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने क्लेम करा कि जी प्राइवेट सेक्टर कोई बहुत बड़ी सबकत ले गया है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में इस कॉन्टेक्स्ट में पेरेंट्स
की चॉइस.
जी
अब आ जाए जो स्कूल में लाहौर में देखता हूँ,
जी
मैं नाम ही लेता जो भी पढ़े स्कूल माशाल्लाह, अब इनका ज्ञान, इनका निज़ाम कैसा है, ये कैसे कंपेयर करते हैं हमारे जो कॉलेज में आप इस किस्म के जो अच्छे बड़े पुराने स्कूल उनके साथ ही कैसे?
देखिए वो तो मैं एज ए रिस्पॉन्स एज ए टीचर करता, मैं लम्स में पढ़ाता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर को एज इट हैपेंस पढ़ाता हूँ. तो मैं स्कूल, मेरा अपना व्यू ये है कि जो अपर मिडिल इनकम स्कूल हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क, रफली वो एक ही बेस ऑफ टीचर्स को टैप करते हैं. वो टीचर्स यूजुअली उन स्कूलों में जाके पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, कोई फुल टाइम टीचर्स की कोर बेस इनकी बहुत स्ट्रांग नहीं है. तो 19-20 का फर्क रहता है और बैचेस पे भी डिपेंड करता है, कोई अच्छे बैचेस हो जाते हैं. आई थिंक इन स्कूल्स का अगेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं किसी को ये मिसाल देता था, दे रहा था कि जब मैंने हाई स्कूल पास किया, हालांकि मैंने तो एफ ए किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान में रफली कोई 200-250 बच्चा जो है वो ए लेवल्स करता था. और एक्चुअली आई थिंक सिर्फ एक स्कूल था जो लड़कियों की, उस वक्त ए लेवल्स नहीं होता, सी होती थी, हाई सीनियर कैम्ब्रिज, तो वो सिर्फ एक स्कूल करवाता था और लड़कियों के लिए HSC, वो कराची ग्रामर स्कूल. अब मैंने सुना है कि कोई 55-60 हज़ार जो हैं प्लेसेस, या शायद 70 हज़ार, वो आपको ए लेवल्स करा रही हैं, वो लड़कियों को भी करा रही हैं और लड़कों को भी करा रही हैं. तो ये जो स्कूल हैं, ऑल्दो दे ऑप्ट आउट कर गए लोकल सिस्टम के, वो एक अलग बहस और एक इम्पॉर्टेंट बहस है करने के लिए कि वो एक ड्यूलिस्टिक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं. लेकिन वो जो ये जो स्कूल हैं इन्होंने मिडिल क्लास के लिए अगेन चॉइसेस बहुत बढ़ा दी. तो जो हमारे जमाने में, आपके जमाने में, आप सेंट एंटनी से पढ़े या हमारे जमाने में वो था, सेंट एंटनी हाई सीनियर कैम्ब्रिज नहीं ऑफर किया था हमारे जमाने तक, मतलब हम, मैंने स्कूलिंग अपनी खत्म की 83 तक, मुझे पता है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज मैंने पास किया 89 तक, यही उस वक्त तक सिचुएशन थी। अब आपके पास अगेन एज अ पेरेंट एक मैसिव चॉइस है कि आप डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स रख सकते हैं और इन स्कूल सिस्टम्स में भी वेरिएशन, कुछ स्कूल्स हैं वो 30,000 रुपए महीना के चार्ज कर रहे हैं, कुछ 15,000 कर रहे हैं, कुछ 12,000 कर रहे हैं, सो देयर इज अगेन बहुत वसी जो है वो प्राइस चॉइसेस हैं। और मेरा ख्याल में अभी भी सप्लाई रिस्पॉन्स जो है शायद कम हो। मेरा अपना व्यू ये है कि जैसे आप एजुकेशन पिरामिड में ऊपर जाते जाते हैं, जो सप्लाई रिस्पॉन्स है वो कम होता जाता है, कि मेरे पास कितनी चॉइसेस, कितनी प्लेसेस स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो उस स्कूल, उस लेवल की स्कूलिंग की डिमांड।
तो यानी कि आपका जो सेंट्रल थीसिस ये है कि बच्चों को चॉइसेस देना होगा। मुझे याद है जब
पेरेंट्स,
जब मैं बच्चों पेरेंट्स से, जब मैं निकला सीनियर कैम्ब्रिज करके सब्जेक्ट से, तो ए लेवल का शौक हुआ तो एक ही स्कूल पूरे लाहौर
में पढ़ा रहा था,
उन्होंने हमें कहा भाई यही सब्जेक्ट है और कुछ नहीं, नहीं पढ़ना चल रहा है, निकल जा। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, कहीं और जा ही नहीं सकते, और या जाओ गवर्नमेंट कॉलेज या वहाँ, और कोई चीज़ नहीं थी सब्जेक्ट की चॉइस नहीं कोई वगैरह। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों की चॉइसेस और लोगों का जो होराइजन है बढ़ जाती है लोगों की वो चीज़ें। तो खैर अब बताइए कि ये जो इसमें है, अब ऑब्वियसली अगर किसी ने एजुकेशन देनी है तो उसने पैसा तो बनाना ही ना, खल्क की खिदमत तो, कौम की खिदमत तो वो हुकूमत ने करनी है, तो वो हमारे पब्लिक स्कूल तो माशाल्लाह। ये कौन बात है कि जब मैं पढ़ रहा था तो पब्लिक स्कूल अच्छे, सेंट्रल मॉडल स्कूल था, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता होता था, हम सबसे बेहतर आता था, ठीक है, और वो पब्लिक स्कूल था यानी कि हुकूमत का स्कूल था। अब उन स्कूलों की हालत क्या है?
तो यही आई थिंक ये एक बहुत सेंट्रल क्राइसिस है कि जब हम एजुकेशन की मार्केट में एक चीज, एक पहलू उठा लेते हैं, उस पर अपनी सारी पॉलिसी बना लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। हमें ये सारी चीजें इकट्ठी रखनी। तो हमने एक चीज की बात कर ली कि प्राइवेट स्कूलिंग रिस्पांस है वो मार्जिन पे बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, चॉइसेस पेरेंट्स की बढ़ती चली जा रही हैं और स्कूलों में कंपटीशन बढ़ रही है, ये एक हम समराइज कर देते हैं। अब दूसरी तरफ है, उसी एनवायरमेंट में, उसी तारीख में जब ये कॉम्पिटिशन भी बढ़ रही है, चॉइसिस भी बढ़ रही है, तो जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी है वो सेक्युलरली यानी के
और अब वो उसकी माशाल्लाह हालत खस्ता।
उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, हालांकि थोड़ी सी पोलेमिकल सी मिसाल है, वो ये है कि लाहौर शहर ने प्री पार्टीशन 4 नोबेल लॉरिएट्स प्रोड्यूस किए जिनका लाहौर के इदारों से ताल्लुक था और एक और जिसका लाहौर से ताल्लुक था, जिनमें से 2 गवर्नमेंट कॉलेज के साथ एसोसिएटेड थे, 2 पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड थे और 5वें साहब जो थे वो रुटियार किपलिंग थे जिनका भी लाहौर से बहुत ज्यादा ताल्लुक। और सिर्फ हमने पोस्ट पार्टीशन उन्हीं इदारों में जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वगैरह, अगर उनकी अब आप क्वालिटी देखें तो वो बहुत, वो कॉम्पेरेबल नहीं थे। तो जब मास एजुकेशन सिस्टम ने हिट किया पब्लिक सेक्टर को, तो पब्लिक सेक्टर जो थी वो उससे कोप नहीं कर सकी। तो हो ये रहा है कि वो ना उस स्केल से एक्सपैंड कर सकी, सिर्फ खपत को अब्सॉर्ब करने की जो डिमांड आई तो वो भी हमने कह दी, और क्वालिटी टर्म्स में और लूज करती गई। सो जो क्रीम है, ठीक है ना जी, वो क्रीम जो है वो प्राइवेट स्कूल के पास। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंट का माइंडसेट समझने की जरूरत है। ऐसे जरूर पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में और अमीर पेरेंट्स हैं जिनके लिए स्कूल एक स्टेटस का है, और वो लाइनें लगी होंगी एडसन कॉलेज पे, लाइनें लगी होंगी कराची ग्रामर स्कूल पे, लाइनें लगी होंगी लाहौर ग्रामर स्कूल पे और बहुत स्कूलों पे, और उधर लोग असर भी लगाएंगे, हर किस्म की सिफारिश भी करेंगे क्योंकि वो एक क्लब में अपने बच्चे को डाल। लेकिन अगर उन पेरेंट्स से आप थोड़े से नीचे आए और आप अपर मिडिल क्लास पेरेंट के पास आए, और वो एक बहुत बड़ा तबका बन चुका है, उसको आप देखें तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेटस के पीछे भाग, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है बच्चा घुसाना, उसकी फी भी बहुत ज्यादा है, तो वो क्वालिटी कम कॉस्ट को देखें। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है जो कि हिंदुस्तान में होती है, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास एक आईआईटी है जो ग्लोबल क्वालिटी की तालीम दे रहा है और जिसकी प्राइस जीरो है और उसका इक्विवेलेंट अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो मैं अपना बच्चा वहां पे क्यों नहीं भेजूं? और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की इलीट उन्हीं इदारों में अपने बच्चों को भेज, यानी कि हमारी सारी इलीट या गवर्नमेंट कॉलेज या एफसी कॉलेज या इस्लामिया कॉलेज या एमएओ कॉलेज में जाती, आज क्या वही एलीट अपने बच्चे उन कॉलेजेस में भेज रही है? वो नहीं भेज रही, वो पब्लिक कॉलेजेस में फ्री है। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलेजेस की एबिलिटी टू कीप क्वालिटी आपको इतनी गिर चुकी भी है कि इतना मैसिव फी एडवांटेज लेके भी पेरेंट अपना बच्चा वहां पे नहीं डालता। तो इस कॉम्पिटिशन में, यानी कि आप ये सोचें कि पहले एक गाँव में एक आदमी होता था जिसका काम था कि वो रनिंग करे, फिर हमने कहा कि और उसको गांव वाले कुछ पैसे देते थे, फिर हमने कहा कि हम रेस खड़ी कर देंगे। तो रेस जो खड़ी कर दी तो उसमें हम कहते हैं अब हम जीतने वाले को ज्यादा पैसे देंगे, कंपटीशन शुरू हो गई। तो वो जो गांव का आदमी था जो भागता था वो रेस में बिल्कुल पीछे रह गया। तो ये एक क्राइसिस पैदा हो गया है।
बट अब ये मसला जो है कि पेरेंट्स जो माशाल्लाह माँ बाप जो अपने बच्चे भेज रहे हैं
जी
ये अच्छे क्वालिटी के स्कूलों में
जी,
ये तो बड़े खुश होंगे कि भाई हमारे बच्चे माशाल्लाह आला तालीम दे रहे हैं, बड़ी आला क्वालिटी की तालीम दे रहे हैं और ये बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बात कर जाएंगे और माशाल्लाह वकील डॉक्टर क्या क्या कुछ करेंगे, बैंकर करेंगे, माल कमाएंगे, तो इनको तो फीस देते हुए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो बड़ा खुश होंगे फीस देते हुए।
As it happens, मैं खुद उन पेरेंट्स में से हूँ। मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो मंगल को आज से चार दिन बाद अपना वो लेवल का इम्तहान ले रहे हैं और वो दोनों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। नहीं, पेरेंट्स खुश नहीं, खास तौर पे जो अपर एचलॉन है
प्राइवेट स्कूल्स। क्यों नहीं? क्योंकि
ये लॉ पास कर रही है। हाँ जी, ये जो लॉ है ये एक पेरेंटल डिमांड पर,
उसका जरा बैकग्राउंड
है। उसका बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि ये स्कूल्स जो हैं ये काफ़ी तेज़ी से अपनी फ़ी बढ़ाते हैं। इसमें सारे स्कूल्स मुलव्वस नहीं हैं, बट कुछ स्कूलों ने पिछले चंद दस सालों में काफ़ी बड़ी जंप्स की अपनी फ़ी में और वो जंप्स जो थी वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। सो पेरेंट्स जो हैं वो जो है उनकी फ़ी स्क्वीज हुई, मतलब उनकी इनकम स्क्वीज हुई उस जमाने में। तो पेरेंट्स का ख्याल है कि ये स्कूल्स जो है ये अपना अनफेयर एक एडवांटेज उठा रहे हैं अपनी रेपुटेशन की वजह से, जिसकी वजह से ये वो ज्यादा फी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कोर्ट में भी आई बिलीव गए मुझे जो पता लगा, और वो गवर्नमेंट पे भी उन्होंने काफी ह्यूमन क्राई की कि जी ये अनफेयर बात है और उन स्कूलों को बेसिकली अपनी फी जो है वो इतनी
बढ़ाई क्या रंजिश। देखिए अगर आपके बच्चे माशाल्लाह अच्छे स्कूल में जा रहे हैं और आपको फीलिंग हो रही है कि ये बच्चे इतने अच्छे ग्रेड देंगे कि ये वाकई डॉक्टर पता नहीं क्या बैंकर क्या क्या कुछ बच जाएंगे, तो आप क्यों नहीं खुल के पैसे देंगे?
तो ये आई थिंक हमें थोड़ा पेरेंट्स की ग्रुप है उसको तकसीम करना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसे पेरेंट्स हैं कि वो जो फी रेंज स्कूल चार्ज कर रहे हैं वो उसको आराम से अफोर्ड कर, उनके लिए तो ये ज़रूर बजा बात है कि उनको एक बेनिफिट मिल रहा है, और अगर और उनके पास एक चॉइस भी है जो हमने बात की कि अगर आप अपना एक 30,000 महीने वाले स्कूल में बच्चा नहीं भेजना चाहते तो आप निकाल के उसको 20,000 वाले में भेज दें या उसको निकाल के आप 15,000 वाले में भेज दें या 12,000 वाले में भेज दें, लेकिन वो लोग भी खुश नहीं। तो ये मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट है कि हम चाहते हैं जहाँ पे हमें एक गुड खरीद रहे हो या एक सर्विस खरीद रहे हो कि हमें एक फी रिबेट उन पेरेंट्स के लिए जो अफोर्ड वो भी ये डिमांड। फिर वो पेरेंट्स हैं जिनके लिए ज्यादा ट्रिकी है मसला, जो मार्जिन पे हैं, जो बहुत सेविंग करके जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल
कमाई
तो उनको 10-15% की फी हाइक अगर मिलेगी तो वो फी हाइक उनको बहुत बुरी तरह से हिट करेगी और उनको शायद अपना बच्चा विड्रॉ करना पड़ेगा। उन स्कूलों ने जो एक बहुत बड़ी गलती की कि उस उन्होंने अपने पेरेंट्स को कोई बेसिकली एडवांस वार्निंग भी नहीं दी, तो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली फी बढ़ा दी। सो इनकी भी एक स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बट आई थिंक आज आके हमारी दो तीन बातों पर पॉलिसी को हमें दो तीन लेवल पर सोचना चाहिए। एक हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जो फी इंक्रीज हमें क्या एजुकेशन के लिए पे जो है वो करना चाहिए कि नहीं, अगर हमें क्वालिटी में प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दूसरी ये बात है कि क्या प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि मेरे पास चॉइसेस नहीं, तो अगर कुछ स्कूल्स जो हैं वो फी इंक्रीज करते हैं, दूसरे उनको एमुलेट करते हैं, तो क्या मैं मेरे पास चॉइस नहीं है इस बच्चे को उन अपर फी स्कूल्स में से निकाल के कि मैं थोड़ा सा एक नीचे वाले फी स्कूल पे ले जाऊँ, क्या मैं वो चॉइस एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, जबकि मुझे पता है ये सारे स्कूल पेरेंट्स के पीछे भाग रहे होते हैं एडमिशन्स के लिए एक दो स्कूल्स को छोड़ के।
कि अगर मैंने एक बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया, अपने बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया, वो वहाँ चल पाया है, उसके यहाँ दोस्तों एजुकेशन सिस्टम में चल पाया है, तो मुझे निकाल के दूसरे स्कूल में डालने के कॉस्ट बढ़ जाएंगे।
जी बिल्कुल।
तो इसकी वजह क्या वो स्कूल इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि मेरे पास
बिल्कुल कर दिया है
तो फिर मैं कीमत बढ़ा दूँ और मैं इनको पकड़ूँ किसी तरीके से, क्या वो हो सकता है?
जी जी वो बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन उसको अगर आपने रेगुलेट भी करना है, उसको रेगुलेट करने का मकसद ये है कि आप किसी किस्म की प्राइस सर्टेंटी लें, यानी कि मैं अपना प्राइस शेड्यूल कोई प्रोजेक्टेड पब्लिश करूँ कि इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि फी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल मैं आज़ाद ना हूँ। तो मेरे हाल में बहस ये तो नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। बहस ये है कि आप रेगुलेट इस प्रॉब्लम को किस तरह करना चाह रहे हैं, क्या अभी सो इसमें अब हम ले आते हैं जिस एक्ट की हम जिसके लिए हम एक्ट ये कह रहा है कि
मतलब इसका बेसिस ये पेरेंट्स ने शो डाला, उन्होंने डिमांड की, सरकार ने अपनी विजडम में अपनी माशाल्लाह क्या बनाई में उन्होंने एक लॉ पास कर, ठीक है। जो आप कह रहे हैं बात मैं समझा सब करेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ने बगैर सोचे समझे एक चीज कर दी, इसमें अगर तहकीक की जाती तो बड़े रास्ते और निकल सकते।
जी बिल्कुल, मतलब इस जो प्रॉब्लम है एक तो हमने अभी प्रॉब्लम स्टेट करनी है, मेरे ख्याल में एक तो हमें ये भी देखना है कि क्या यही वाहिद प्रॉब्लम है कि नहीं जो इस मिलियू में से। सरकार ने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जो पेरेंट्स ने आर्टिकुलेट, वो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है कि जी अगर फी बढ़ती है तो वो फी जो है वो बहुत हाई लेवल पे। सरकार की रिस्पांस ये थी कि उन्होंने एक एक्ट पास किया जो राय मैंने सुना शायद हिंदुस्तान में भी हो, सो ये नहीं है कि इनकी इन्होंने खुद इन्वेंट
यानी कि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते पर कॉपी एक दूसरे डाउनलोड करते।
अच्छा, वो लॉ ये कहता है कि हम अगर कोई स्कूल है वो अपनी एनुअल फी जो है वो 5% या 8% मैंने दोनों नंबर एक्ट में इस वक्त 5% लिखा हुआ है जो वेब पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने वैसे सुना कि इसको मेल करके 8% तक उन्होंने कर दिया, वो एक 8% इंक्रीज कर सकता है अपनी फी में, और फी को भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है उसमें उन्होंने कुछ चीजें निकाल दी। अगर वो उससे ज्यादा करेगा यानी कि 8.001% अगर वो बढ़ा देता है तो एक कमेटी होगी जिले लेवल, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि सामने आपको एक पेशी देनी होगी और आपको अपने आप को कमेटी को जस्टिफाई करना होगा कि जी हम इससे ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर फी इंक्रीज ये अभी मुझे नहीं, लेकिन उस आई बिलीव शायद DCO साहब हेड करेंगे लेकिन मुझे मालूम नहीं और एक्ट में भी नहीं लिखा, तो मैं
सरकार
तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है प्राइसेस जो कि हमने इस पे सोचना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है। सो ये अब ये किस प्रॉब्लम को हल कर रहा है, ये वो प्रॉब्लम को हल कर रहा है कि फी बहुत ज्यादा, तो हमने कहा कि हम प्राइस कैपिंग शुरू करें और अगर जस्टिफाइबल है तो उससे हम एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के थ्रू अलाउ करेंगे जिसमें आपको भी पता है मुझे भी पता है कि एक किस्म की एक कोजी रिलेशनशिप बनेगी गिव एंड टेक की, कि जी कुछ डिस्क्रेशनरी आपने पावर दे दी, जो हमें पता है कि एक तरफ सरकार जो डिस्क्रेशनरी सरकार की अगर आप टैक्सेशन पे और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे मेजर्स लें तो सरकार कहती है कि ये डिस्क्रेशनरी पावर जो है ये प्रॉब्लमैटिक थी, टू दी एक्सटेंट की सरकार कहती है कि पटवारियों के डिस्क्रेशनरी पावर प्रॉब्लमैटिक थी, तो आप NRM या IAS पे
रिश्वत आ जाती है और
उससे और प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक और बट कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इस एजुकेशन जो हमने बात की कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी प्राइवेट की भी पब्लिक की भी अभी
में।
सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं प्राइस कैप करना शुरू करता हूँ तो क्या ये क्वालिटी न्यूट्रल होगी बात, मुझे तो नहीं पता, मैं एक
नहीं क्वालिटी न्यूट्रल तो बता दीजिए।
देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है ना जी, मैं लेट्स से बैकलॉरिएट सिस्टम में जाना चाहता हूँ, मुझे सडनली इन्वेस्टमेंट्स करनी है बेटर लैब फैसिलिटीज में, बेटर हिस्ट्री आर्काइव्स में,
लाइब्रेरी
बनानी है, टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है। अब ये मेरी ट्रांजिशन अगले 3 साल में, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज 15% आ जाती है, ये मेरी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है शिकागो और कैम्ब्रिज का काफी इख्तलाफ रहा है इस चीज
में, ये
तो लेकिन मतलब हमें अगर मार्केट मैकेनिज्म हो तो वो मार्केट मैकेनिज्म की जो एक बहुत बड़ी सेल होती है इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनोवेशन एंड क्वालिटी। और हमें हमें ये पता है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के फेलियर्स का भी बड़ा मवाद है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर सक्सेसेस भी हैं। लाम्स उसकी एक सक्सेस है, आ खान उसकी एक सक्सेस है, शौकत खान इज नॉट प्राइवेट सेक्टर बट इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट्स और नॉन गवर्नमेंट, उसकी एक सक्सेस है, केयर स्कूल्स की सक्सेस है। ये सारी मार्केट में आइदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट इनोवेशंस लेके आते हैं। उसी एटमॉस्फेयर में जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी गिर रही है और गवर्नमेंट एजुकेशन की क्वालिटी गिर रही है, अब इस मिल्यू में अगर हम प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी ऑफ चॉइस जो है इन इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो मेरा सवाल एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एन एकेडेमिक सिर्फ ये है, इट्स अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, बड़ा मासूम सवाल है कि इसका क्वालिटी ट्रेड ऑफ क्या किसी ने सोचा है कि इसका कोई क्वालिटी ट्रेड ऑफ। और दूसरा मेरा सवाल ये है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ फी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी है, उस पर मैं आऊंगा कि उसको किस तरह हमने बेहतर करना, बट मेरे लिए प्रॉब्लम दूसरी जो मैंने कहा था कि क्वालिटी की गैप की प्रॉब्लम है,
वो क्यों है
जी,
वो क्यों
है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा ये अपना ये ख्याल है कि मुझे, और मैं एजुकेशन का रिसर्चर नहीं हूँ, मैं इस पर मैं एक बेसिक इकोनॉमिक इंट्यूशन यूज कर रहा हूँ और लोगों का जो मैंने काम पढ़ा है, लेकिन मेरी तो ये जो सारी बातें एक ओपिनियन है, ये फैक्ट पे बेस्ड बातें नहीं जो अब मैं कर रहा हूँ। मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो मेरा ख्याल में हमारा जो करिकुलम है और उसमें जो स्किल्स हम बच्चों को दे रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लम है। उसका मतलब क्या है, मकसद ये है कि मेरे लिहाज से लोगों को सोचना सिखाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना और पढ़ना सिखाना 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स। एक एजुकेशन सिस्टम जो वो 3 स्किल्स ट्रिगर करता है वो एजुकेशन सिस्टम रोट वाला सिस्टम है। हमारा पब्लिक सेक्टर के सिस्टम के बैठने की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि हमने रोट का सिस्टम शुरू किया,
रट्टे का
और वो जो रट्टे का सिस्टम था वो मैच हो गया एग्जामिनेशन से कि जो रट्टे को रिवॉर्ड करता
वो तो हमने ठीक
ठीक नहीं
क्या,
हाँ वो यही हुआ। ओ लेवल्स ए लेवल्स में भी यही रीत आ गई थी और आप देखेंगे कि इस वक्त एक मैसिव रिफॉर्म हो रहा है वो लेवल्स। तो शुरू की जो आजादी प्राइवेट स्कूल्स ने ली, उन्होंने कहा जी हम इससे डिफेक्ट करके ओ ए लेवल्स पे शुरू कर दिए हायर इनकम प्राइवेट स्कूल्स, जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स है उन्होंने अपनी एग्जाम सेटिंग शुरू कर, वो भी रेगुलेटेड नहीं थे, ठीक है। तो उससे कुछ एक ओपननेस है, लाइक लाम अपना करिकुलम वो पंजाब यूनिवर्सिटी का करिकुलम नहीं फॉलो करता था तो हम इनोवेट कर सके, लेकिन हुआ ये है कि वो सिस्टम्स जो हैं वो भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, दूसरी स्कूल्स जो है वो इनोवेशन नहीं ला सके। अब उसमें 2-3 कंस्ट्रेंट्स हैं। एक कंस्ट्रेंट ये है कि जो स्कूल्स की फाइनेंसिंग की मार्केट, और ये भी मेरी बात नहीं है, ये अगैन आसिम ख्वाजा ताहिर वगैरह का जो काम है वो दिखा रहा है कि स्कूल्स की फाइनेंसिंग की बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट। सो स्कूल्स की जो ग्रोथ है वो लार्जली अपर एंडेड स्कूल्स को छोड़ के जो बैंक्स के पास जा सकते हैं, उससे आप नीचे जब आ जाते हैं खासतौर पे लो इनकम मिडिल इनकम स्कूल्स जो हैं उनको रिटेन प्रॉफिट्स पे ग्रो कर, ठीक। ये लोग जो हैं बहुत इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। तो टीचर ट्रेनिंग में भी इन्वेस्टमेंट उनके लिए करनी मुश्किल है बिकॉज टीचर छोड़ जाते हैं। सिस्टम्स डेवलपमेंट ये करना नहीं चाहते बिकॉज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ईयर टू ईयर टू ईयर रह। तो देयर इज अ होस्ट ऑफ मार्केट की प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से एक प्राइवेट स्कूल का इनिशिएटिव जो है वो बहुत कंस्ट्रेंट
है। आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्कूल बनाने जाऊँ तो मेरी क्या कॉस्ट है, मैंने कहा एक कमरे में एक टीचर बैठाना है और क्या करना है।
हाँ जी, सबसे पहले तो आपको जमीन लेनी पड़ेगी।
नहीं जमीन क्या,
हवा में तो कमरा नहीं बनाएगा।
स्कूल कहाँ बन
स्कूल जमीनों पे बनते हैं ना, मतलब एक बिल्डिंग होगी, कोई एक कमरा भी आपको बनाना हो कोठियों में जो है उसकी रेंटल मार्केट जो है आपको,
यानी कि मैंने कोठी कराए
फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने स्कूल किया तो मुझे कमर्शियल एक पूरी
रेगुलेटरी सिस्टम से
मुझे ये मालूम नहीं है,
स्कूल हमारे मुल्क में कमर्शियल
है और आई डोंट थिंक रेजिडेंशियल एंटरप्राइज, ये आपको वैसे बेहतर पता
है कि आधा तो मुसीबत ये है कि हम अपने ऊपर खुद ही हमने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पहले हमने स्कूलों की जगह नहीं बनाई जी, ठीक है ना, ये वो तो सारे स्कूल कोठियों में, ठीक है, अब जब हमें ख्याल आ रहा है तो हम बोलते हैं इसके बाद इलाके में स्कूल बना रहे हैं, शहर के अंदर जो स्कूल है वो माशाल्लाह कोठियों में
कोठिया
और कोठियों में ऐसे जो उस खाने में एक क्लासरूम है, बेडरूम में एक क्लासरूम है, खाने का हमें प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो पहले तो पैसे लग जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग ही ठीक करने में, इधर कमरा बनाना उधर कमरा बनाना वगैरह, क्योंकि आपको जमीन मिलती नहीं जहाँ स्कूल बने, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने स्कूलों की जगह छोड़ी, तो सबसे बड़ा कॉस्ट तो ये है,
एक बहुत बड़ा, दूसरा जो बहुत बड़ा कॉस्ट है वो किसी भी, बिकॉज ये एक ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव सर्विस, वो टीचर्स,
अब जो शोर मचा हुआ है वो कहते हैं टीचर्स को तनख्वाह देती है,
जरूर नहीं देते होंगे, कुछ देते हैं, मेहनत में तनख्वाहें कुछ बेहतर होंगे, बट ये अभी भी आई डोंट थिंक के टीचर्स सर जो है वो उनकी वेजेस, पर्टिकुलरली जैसे आप लो इनकम स्कूल्स में जाते हैं तो वो
ज्यादातर भी तो मामला है ना, कि टीचर्स को आप स्कूल में तनख्वाह नहीं देते तो वो बाद में ट्यूशन में क्या पढ़ाता है,
एब्सोल्यूट,
तो बच्चा जो अनुसार वो स्कूल में दो दफा जाता है, दिन में एक दफा नहीं जाता,
एग्जैक्ट,
ठीक है, तो जो हमारी खुशकिस्मती थी कि मैं शाम को गेम कोई खेला करता था,
वो सब
साइकिल चलाया करता था, अब बच्चे में देखो सारा दिन चले,
सो ये वो सारे क्वालिटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मेरा जो इख्तलाफ है, मेरी जो पुश होगी प्राइवेट स्कूल में, वो फी की तो एक है लेकिन उसका मेरा आंसर फर्क है,
अभी उधर ये शबाशरी को अगर आप बता रहे हैं तो आप चाहें
उस पर अगर आगे अगर मैं ये बात करूँ, ये सवाल अगर आप मेरे से दो मिनट बात करें,
ठीक है,
अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक इशू जो मेरा है प्राइवेट स्कूल्स है फी के अलावा छोड़ के, फी पे मेरी एक डिफरेंस है हुकूमत से कि उसकी रिस्पॉन्स क्या होनी,
ठीक,
फी के अलावा छोड़ के मेरा प्राइवेट स्कूल से ये क्वालिटी डेफिसिट, कि मेरा इशू ये है कि मेरे बच्चे को मुझे आपके पास भी भेजना पड़ता है स्कूल में और फिर मुझे ट्यूशन, अच्छा, और जैसे मेरा बच्चा हायर क्लास में जाता जाता है तो मेरी स्कूल की फी तो कोई 40% है मेरे टोटल स्कूलिंग एक्सपेंडिचर की बच्चे पे, क्योंकि वो ट्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, खासतौर पर वो नवी दसवीं ग्यारहवीं में आती है, तो वो दूसरा ये मतलब है कि आपका जो टीचर है वो एक सर्टन आवर से ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि वो और जगह अकेडमीज में पढ़ा रहा है, तीसरा ये इशू है कि आपने गेम्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स हायर लेवल पे तो किए हैं बट छोटे लेवल पे आप उस तरह इंड्यूस ही नहीं कर सकते, मसलन आपकी जो कंपलसरी गेम्स होती थी, स्पोर्ट्स होती थी, डिबेट्स होती थी, जो सारी आर्टिकुलेशन वगैरह प्रोड्यूस करती थी वो भी आपने खत्म कर दिए, तो मेरा तो एज अ पेरेंट ये बहस है कि अगर आप मेरे से फी ये देख ले रहे हैं तो एक इनोवेटिव करिकुलम और ये सारी फैसिलिटीज और एक स्कूलिंग सिस्टम जिसमें ट्यूशन एक्सेप्शन हो नॉर्म ना, वो मुझे स्कूल चाहिए, ये रेगुलेशन
आप ये कह रहे हैं कि आपने बच्चा स्कूल किया तो आपके और प्रिंसिपल के दरमियान या ऑनर के दरमियान एक किस्म का मायदा है
जी, बिल्कुल,
कि आपने बच्चे को कि उसने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन,
एब्सोल्युटली,
उसने आपके बच्चे को जो आपके जहन में है कि नॉट ओनली उसको अच्छे नंबर दिलवाने हैं, उसको एक काबिल तरीन आदमी बनाना है, उसको एक सोसाइटी का मतलब किस्म का हिस्सा बनाना है, उसको सोशल नॉलेज भी सिखानी है, उसको पढ़ाई लिखाई भी सिखानी है, उसको क्वेश्चनिंग भी सिखानी है, उसको क्रिएटिविटी भी सिखानी है, उसको कोई डिबेटिंग क्लब शब्द बना के उसको अपने साथियों के साथ काम करने के तरीके का सिखानी है, बहुत बड़ा चैलेंज है,
लेकिन बहुत बड़ा
चैलेंज। दूसरा आप कह रहे हैं कि उसके पास भी फ्री टाइम देना चाहिए, उसका दिन रात नहीं लगना चाहिए, जाहिर होना चाहिए कि टीचर ध्यान पढ़ा रहे हैं। तीसरा आप कह रहे हैं कि टीचर ऐसे होने चाहिए जो कि अपने काम में कमिटेड हो,
ये
बच्चा लेके भाग रहे हो, कभी स्कूल ए में पढ़ा रहा हो, स्कूल बी में पढ़ा रहा हो, स्कूल सी में पढ़ा रहा हो, शाम को ट्यूशन ला रहा हो, इसका मतलब दोनों बच्चे और उस्ताद खराब हो रहे हैं, दोनों पता नहीं किस निजाम में फंसे हुए हैं, जहाँ पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है पर कोई उनमें फोकस करने का टाइम,
अच्छा, और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है प्राइवेट स्कूल्स। देखें, मैं उसी टीचर को इस वक्त लाहौर में ओ लेवल की एक स्टैंडर्ड मंथली ट्यूशन जो है वो 15,000 रुपये तो एक टीचर लेता है, माशाल्लाह काफ़ी लोगों से लेता हूँ। वो टीचर शायद एक स्कूल में 30-35,000 लेता हूँ, लेकिन उसको ये एडिशनल पैसा भी मिल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो
15,000 वो एक बच्चे से लेता है
घंटे के लिए,
सिंगल होता है एक बच्चे की क्लास में होता है या बहुत
एक बच्चे टीचर की, हो सकता है दो होते हो तो 30 ना कर देता हो, 20 कर देता हो, 18 कर देता हो, तो रफली एक बच्चे पे भी 12-15 ठीक है, वैसे तो 25 तक भी ले रहे हैं। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कहता हूँ एज अ पेरेंट कि मैं वो पैसे उसको डायरेक्टली देने के बजाय स्कूल को दे देता हूँ, स्कूल उसकी वेज बढ़ाता हूँ, इसमें खपत पैसे की तो उतनी रही ना सिस्टम में,
ऐसे तो आपने उतनी
लेने ही देने
ना, सिर्फ ये है कि बच्चा स्कूल में एफिशिएंटली पढ़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ेगा, टीचर भी ध्यान देकर पढ़ेगा,
ठीक है,
टीचर कहे मैं स्कूल बजाय ट्यूशन पढ़ाने के शाम को जाकर सैर करूंगा बाद में।
एग्जैक्टली। अच्छा अब वो जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है वो स्कूल्स नहीं हल कर पा रहे, अब प्रॉब्लम ये है कि उसको आप कैसे ठीक करेंगे, उसका हल जो है ये मसाइल का, और ये आपको भी बात मुझे भी और किसी भी हमारे लिसनर को ये बात समझ आ जाएगी कि उनकी फी कैप करने से तो नहीं है, ठीक है ना, उनकी फी हल कैप करने से क्या होगा कि उनको आपने बहाना दे दिया कि कल को जब वो लैब नहीं बनाएंगे और मैं एज ए पेरेंट कहूंगा कि आपने लैब क्यों नहीं बनाने दीजिए, हुकूमत ने फी कैप कर दी, मैं कहूंगा जी आपने टीचर को सैलरी क्यों ज्यादा नहीं दी, आप कर दीजिए मैंने फी कैप कर
दिया। अब मुझे ये समझे
जी
कि अगर आपके पास
जी
मैं मानता हूँ एक चीज ऊपर मैं कि आप जो भी कहेंगे चीज वो माशाल्लाह पत्थर पे लिखी होगी, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे उसको तहकीक करके मेरे नजरिए हर पॉलिसी लंबी तहकीक
करनी चाहिए
और बड़ी चीजें सोच विचार के
ये हमारे
पॉलिसी
ऑप्शन बनानी चाहिए। हम
अब आप बता दें आपकी आप मैं ये नहीं कहता सोल्यूशन, अब मैं ये कहता हूँ आप कहाँ से सोचना शुरू करेंगे
जी। मैं देखें सबसे पहले सोचना शुरू हमें करना चाहिए कि हम मसला क्या हल करें, हमने इस जो सारी तहवील बहस थी उसके बाद ये फैसला किया कि हम दो मसले हैं, एक एक्चुअली दूसरे मसले के दो जुज हैं। पहला मसला है क्वालिटी, हमने बात की थी प्राइवेट सेक्टर के यहाँ से, पब्लिक सेक्टर का भी वो इशू कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज क्वालिटी डेफिसिट को कम करो, ठीक है। दूसरा हमने जो बात की जिसपे इतनी हमारी तहवील बात है बट वो इम्पोर्टेंट है, वो है फी की बात कि लोगों की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है जी। उसमें दो पहलू हैं, एक फी इंक्रीज का और एक है क्या मैं एक सिस्टम एक्सेस भी कर सकता हूँ कहीं, ठीक है जी। अब जो भी हम बात शुरू करें रिफॉर्म की उन्होंने इन दोनों मसलों को हल कर, मेरे लिहाज से जो फी जो करंट पॉलिसी है वो मसला तो हल नहीं कहती, जो कि बच्चा पहले ही बाहर है उसकी अगर आप करंट लेवल्स पे फी फिक्स कर देंगे वो अंदर तो आ नहीं सकता है स्कूल सिस्टम से, तो वो तो आपका मसला हल नहीं कर रहा। तो आप एक मार्जिनल पेरेंट को बेनिफिट देते हैं जो फी हाइक से उड़ जाता है, लेकिन उस फी हाइक का क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, मैं आपको 100 उसके वजूहत दे सकता हूँ कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स की मिसालें दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप फी हाइक करते हैं, मैं सैलरी हाइक करनी छोड़ देता हूँ, तो टीचर क्या करेगा,
टीचर आराम कर देता हूँ 5 बजे 2
कर देता हूँ, नहीं मैं उससे ज्यादा आपको मिसाल दे रहा हूँ, टीचर आप उतने ही रखते हैं, टीचर को आप सैलरी नहीं देते, वो अपनी आवर्स टीचिंग की स्कूल में कट करेगा, अपनी अकेडमी में बढ़ा देगा, अकेडमी इस रॉ से रेगुलेटेड ही नहीं, तो मुझे नहीं पता, और चाहे मैं ब्यूरोक्रेट हूँ या पेरेंट हूँ मेरे अंदर तो तहकीक है ही नहीं कि मैं समझ सकूँ कि क्वालिटी मार्जिन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सो ये उस तरह
बुरा तो बाद में पता चलेगा,
12 साल, ठीक है, तो ये उस तरह देते हैं। अब करना क्या चाहिए, हमें ऐसे ही रिफॉर्म सोचना चाहिए जो दोनों चीजों पर अफेक्ट करे, एक्सेसिबिलिटी भी हम बेहतर कर सकते
हैं
जी। बिल्कुल बिल्कुल,
तो आप जरा उसी तरीके से हल करके
जी। तो देखिए तो प्रॉब्लम हमने सेट कर दी, क्वालिटी और एक्सेस हमने बेहतर कर,
देखिए ये भी बीच में दिखा दिया कि प्राइस इंटरवेंशन विल बी इनएफिशिएंट,
प्राइस इंटरवेंशन विल बी इनएफिशिएंट, ठीक है जी। अब पॉइंट ये एक्सेस किस तरह मिलता है, देखिए हम जिस बात से हमने शुरू की कि ये एक मार्केट प्लेस जहां पे पेरेंट्स के पास चॉइस है, तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी बढ़ाना शुरू करूंगा जो डेफिनेशनली जीरो फी स्कूल या जीरो फी कॉलेजेस, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टूडेंट्स जो कि उसका रेवेन्यू बेस है वो लूज करना शुरू कर
देखिए, ये चीज तो आप गिवन रखें पब्लिक सेक्टर स्कूल्स इंप्रूव,
जो चीज 70 साल तक ठीक थी वो आगे ठीक हो, ठीक है। तो ये आप वो उस पर एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा, अगर आप सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर इम्प्रूव हो सकती है तो हम कर लेंगे। बट मेरा तो इस वक्त हाइपोथेसिस ये रखे पब्लिक सेक्टर स्कूल इम्प्रूव नहीं हो सकते,
तो फिर हम क्वालिटी एजुकेशन की एक्सेस नहीं देते। अगर हम प्राइवेट स्कूल में भी मतलब उन उस तबके के लिए जो प्राइवेट
रेगुलेशन वो बताए
जी,
या वो निजाम दे रहे हैं जहाँ जो भी हुकूमत, मैं ये कहता हूँ सर पहली चीज में फिर क्या आप हुकूमत की इंटरवेंशन के बिल्कुल खिलाफ है, फ्री मार्केट के आदमी हैं?
नहीं आप
फ्री मार्केट का और मैं कहता हूँ बट मैं ये भी आपको कंसीडर कर देता हूँ कि एक लॉक इन इफेक्ट हो जाता है कि भी जिस बच्चे ने स्कूल डाला है, 5 साल एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, उस पर इतना आसान काम नहीं, उठा के दूसरे स्कूल में डाल दे और फिर अगले साल तीसरे स्कूल में डाल दे, स्कूल से स्विच करना आसान काम नहीं है, एक किस्म की ये भी एक टेम्पररी मैरिज हो जाती है। तो इसलिए यस स्कूल्स का निज़ाम को भी कुछ देखना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता रेगुलेट कर, पर मैं ये कहता हूँ इस प्रॉब्लम को हम कैसे स्टडी करें और कैसे अपने आप को कन्विंस करें कि क्या कोई हुकूमत की इंटरवेंशन की जरूरत है कि नहीं, या अगर नहीं है तो क्या मार्केट में कोई ऐसी नई तंजीम की जरूरत है जिसमें ये ठीक हो सके चीज।
देखिए कोई मैं आपसे इस पे डिसएग्री करता हूँ, मेरा ख्याल में मैं इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेता कि गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म है कि स्टिमुलेट करे स्कूलों को जो लो फीस
स्कूलों को
बाहर। फिर मेरा व्यू ये है कि जो तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में है उसके लिए हम बात कर सकते हैं, जो बच्चा ऐसा है कि जो प्राइवेट स्कूल को एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी लेवल पे, उसके लिए हमें बात जो है मुश्किल हो जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल ये रहेगा कि मार्केट में क्वालिटी के बेसिस पे कंपटीशन आपको बेहतर करें,
ठीक है। तो मैं कम अज कम 10 या 15 प्राइवेट स्कूलों के नाम बगैर सोच समझ ले सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मेरे पास आप चॉइस की बात कर रहे हैं कि हाँ लाहौर में आपके बच्चों के पास इस वक्त मेरे पास 10 या 15 ऐसे स्कूल हैं जो आप सोच सकते हैं उसके नाम भेज सकते हैं, बल्कि ज्यादा ही।
लेकिन हमने उनके भी क्वालिटी डेफिसिट्स गिनाए ना कि वो टीचर्स इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं कि उनको कैसे हल, तो उनको हल करने का तो तरीका यही है कि एक चीज तो जो सरकार फौरन कर सकती है कि किसी किस्म की क्वालिटी बेंचमार्क करे, इस तरह की रेटिंग नहीं जैसे HEC कर रही है
जी,
उस तरह की नहीं, उसका सिंपल मेट्रिक ले लें, बेशक उसकी कुछ फैसिलिटीज ले और कुछ रिजल्ट्स ले जो कि वो नहीं ले रही, उस रिजल्ट्स को शाया करना शुरू कर दे पेरेंट्स के लिए।
सॉरी वो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा जैसे HEC में रेटिंग की कॉलेज
चले वो ना करें, और मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खुद ये करें, वो ये करे कि जी एज अ कमिटमेंट टू द पेरेंट्स हम एक रेटिंग सिस्टम करें, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है
जी, मैंने सुना है
नहीं, पर हमारे मुल्क में एक और भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साहब, वो ये है कि हमारे मुल्क में जो मालिकान हैं वो हुकूमत की तरह किसी चीज को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते,
ठीक है। तो फिर सरकार को रेगुलेट
करना, सरकार भी जो सी है ना अनफॉर्चुनेट, तो अच्छा चले ये हो गया, हमें कोई रेटिंग मैकेनिज्म चाहिए और वो रेटिंग मैकेनिज्म क्रेडिबल होना चाहिए।
हाँ, वो क्रेडिबल होना चाहिए, उसमें हमें दो चीजें प्रोवाइड करनी, हमें जो क्वालिटी लर्निंग की दे रहा है, फैसिलिटीज की दे रहा है जो हमने दूसरे क्वालिटी डेफिसिट और जो फी दे रहा है उसको शाया कर दे, और अगर आप उसे एक स्टेप ज्यादा जाना चाहते हैं तो लोकेशन भी शाया कर, क्योंकि एज ए पेरेंट मुझे नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, मुझे इंफॉर्मेशन मिल
रही है। ये चलेगी बात अगर हम स्कूलों पर बाजू करते कि वो अपनी वेबसाइट पे सब अपनी चीजें लगाएं, फॉर एग्जाम्पल कि उनके कितने बच्चे शामिल हो चुके
हैं,
उनके टीचरों को क्या तनख्वाह मिलती है, ठीक है, कितने टीचर हैं उनके पास, कितनी स्कूल में पढ़ाई होती है, उस साल के एंड में जो एग्जाम रिजल्ट होते हैं वो छापे, ठीक है। और इसके सब भी और
भी सिर्फ बाय द वे सिर्फ वो नहीं जो अच्छे करते हैं बच्चे, आई एम सेइंग कि उसको आप जैसे सबका एवरेजेस आपको दे, लेकिन वो सबको कंफर्म करना पड़ेगा एक ही रिपोर्टिंग।
क्या ये नहीं हो सकता एक और तरीके कि हम लंग जैसे एक क्रेडिबल इदारे को या भी ये मिला ये दो तीन ऐसे
बिल्कुल
हम उनको ये ठेका दे
आसान
सरकार उनको ठेका 4-5 स्कूलों को कि भाई जान हर एरिया के स्कूलों को जो भी
रेट करें और वो रेटिंग शाया करें,
ये रेटिंग आपकी शाया करें, आप लोगों का रेपुटेशन
ठीक, लंग
की रेपुटेशन
ठीक, एक ये बात ये तो आई थिंक मतलब इससे क्या होगी कि मार्केट इन्फॉर्मेशन बेहतर होगी, पेरेंट्स जो होगी ज्यादा रैशनल चॉइस. बाय द वे एक बहुत अच्छा पेपर है ये आसिम ताहिर और जिष्णु का, जिसपे उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड इंटरवेंशन की हुकूमत पंजाब के साथ ही मिलके, और उन्होंने विलेजेस में इसी किस्म के रिपोर्ट कार्ड शाया करके जो थे हर हाउस होल्ड को जाके दिए जो कि कैचमेंट एरिया में थे उस मार्केट प्लेस ऑफ स्कूल्स के. वो ये देखते हैं कि इसके क्वालिटी इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं. पेरेंट्स एक्चुअली अपने बच्चों को निकाल के दूसरे स्कूलों में भी डालते हैं. जो स्कूल ज़्यादा फी चार्ज कर रहे होते हैं उनकी फी थोड़ी घटाते हैं.
आप कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड क्या किया?
उन्होंने रिलेटिव रिपोर्ट कार्ड कि ये जो आपके सात स्कूल है
किस रिपोर्ट कार्ड कौन भर रहा था
जी
कौन भर रहा
वो था? वो तो लर्निंग टेस्ट कर रहे थे. वो छाप के उन्होंने जो पेरेंट कैचमेंट एरिया था उसमें सारे पेरेंट्स का बिहेवियर बहुत इंटरेस्टिंग. जहां पे एक स्कूल एक क्वालिटी थ्रेशहोल्ड से नीचे गिरता था लर्निंग आउटकम निकाल के बाद, वो निकाल के बाद अब वो जो स्कूल था उस पर एक कंपेरेटिव प्रेशर आ गया. ठीक है जी. जो बच्चे थे जो बहुत ऐसे स्कूलों में थे जहाँ पे वो फी ज्यादा चार्ज हो रही थी लेकिन उनके लर्निंग आउटकम्स में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, उन्होंने अपनी स्कूलों ने फी ड्रॉप कर दी.
तो फिर आप जो कह रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग सब चीज कि हुकूमत अगर जरा ठहराव से सोच है वहाँ करती तो नहीं ये प्राइस कैप लगाने के पहले से हुकूमत सिर्फ ऐसे इम्तिहान एरिया में अच्छी यूनिवर्सिटी चुन के जो भी है, क्योंकि जैसे नाम लाहौर में अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट में गुजरावाले में आता है नाम
ITU कर ले
भाई. हाँ ITU भी है मतलब कभी तक गवर्नमेंट कॉलेज में
है, गवर्नमेंट कॉलेज कर
रहे हैं UET भी है. ठीक है, अब एक किसी पर ये सालों को चुन ले अब UET को भाई गुजरावाले का करें, ITU को क्या फैसलाबाद का करें, नाम सूबे का पार्ट का करें,
यूनिवर्सिटी
जो भी और भी है जो उनको ठेका दे कि भाई जान हम आपको पैसे दें, उनकी भी रिसर्च क्वालिटी बढ़ती है, मेहनत करेंगे और आपस में कम्पेटिटिव और हमारे स्कूलों को भी प्रेशर पड़ेगा वो करें. एक तो ये समझ आती है ठीक है जिसमें हुकूमत के बहुत थोड़े पैसे लगेंगे, मेरा ख्याल इसमें करोड़ों में भी रुपया नहीं लगेगा बहुत.
और इसमें खूबसूरती है कि हम ट्रिगर किस चीज को कर रहे हैं, मार्केट मैकेनिज्म, हम पेरेंट्स की चॉइस को ज्यादा रैशनल बना रहे हैं.
और दूसरा इसमें किसी की कोई निजाम नहीं और कोई मारधार नहीं है, कोई
डीसी
चलाना है, कोई डीसी ने मीटिंग नहीं चेक कर
और स्कूल का ऑफ द हुक नहीं कर रहा है. अगर स्कूल कहता नहीं मैं फी यही रखना चाहता हूँ लेकिन मैं यही रिजल्ट देना चाहता हूँ तो रखे लेकिन
और दूसरा ये अगर यूनिटी की रेटिंग बेहतर होती है गवर्नमेंट कॉलेज से या लम्स से सामने आते हैं, अगर लम्स की रेटिंग बेहतर होती है ITU से सीखेगी मतलब वो भी एक कॉपरेट. तो मेरा मतलब ये होती है जी लेयरिंग ऑफ मार्केट अपॉन मार्केट और एक मार्केट दूसरी मार्केट को सेल करती
है. एब्सोल्युटली
ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी सोच.
अगर दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो आपको करने की जरूरत है वो ये करने की जरूरत है कि आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स शुरू करने की और उसमें आप जरूर ये कर सकते हैं कि इन लोगों का अगर वाकई एक्सेस परफेक्ट है जो होगा उनमें कुछ स्कूलों का होगा सबका नहीं होगा, उनको फोर्स करें और हुकूमत उसके साथ कोई मैचिंग फंडिंग स्कीम शुरू करें जो कि उन बच्चों का एक्सेस जो बिल्कुल जो ब्राइट भी हैं बट उनको बेहतर क्वालिटी स्कूल सिस्टम्स की क्वालिटी में भी तो फर्क है, वेरिएशन, जो हायर लेवल पर जा सकते हैं बट इनकम की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उसको आप बेहतर करें. तो उसका आपको किसी किस्म का निज़ाम बनाना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज एक्सेस का इशू जो है वो बहुत सिवियर.
यहाँ दो तीन चीज़ें आप कहते हैं जो मुझे थोड़ा सा इंक्वायर करना
पड़ेगा.
एक तो एक्सेस प्रॉफिट
जी,
अब मैं कैसे जज करूँ एक्सेस प्रॉफिट किसी
मुझे नहीं पता. अगर मेरे पास पैसे है मेरे बच्चे ने 6 मारे राइट whatever, तो मेरे बच्चे को वो स्कॉलरशिप दे
देंगे इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्रांडिंग बढ़ानी है जब ये रेटिंग का निजाम जो आपने पहले सजेस्ट किया हमने बना दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली पर एक प्रेशर पड़
जाएगा. मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स की कमिटमेंट अपने स्कूल, सो आई डोंट वांट के स्कॉलरशिप्स टू अट्रैक्ट बेटर स्टूडेंट्स पे गेम शुरू हुई हो क्योंकि उसमें ये होगा कि सारे अच्छे स्टूडेंट नहीं होते. तो बेचारा मैचिंग प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ज्यादा अग्रेसिव स्कूल है जो थोड़ा सा बेहतर है वो सारे अच्छे बच्चों को ले जाता है, और जो पीछे थोड़ा सा स्कूल है और जरा कम फी चार्ज कर उसके से सारे बुरे बच्चे ले जाते हैं, राइट? मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स अ गुड सिस्टम। नहीं, उधर स्टेट रेगुलेट स्टेट क्या है, मैं मैचिंग फंडिंग देता हूँ आपको कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट उसके साथ मेरिट का नीड के बेसिस पे मैं स्कॉलरशिप आपको मैच करूं।
I very disagree with you.
I know you. I knew you. That's not unexpected. And
okay. Sorry for being so obvious. मैंने देखा मुझे थोड़ा सा परेशान
जी
मुझे मुझे कि आप फिर वो arbitrary जो जजमेंट है वो स्टेट के हाथ में डाल देते। मेरा जो
नहीं
कह रहा
तो वहां
वही शुरू हो जाएगा जो
मैचिंग स्कॉलरशिप सिस्टम्स बेहतर किए जा सकते हैं ताकि वो बच्चे जो 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 अच्छा लर्निंग आउटकम्स डिस्प्ले कर रहे हो उनका इक्वल अपॉर्चुनिटी थोड़ी बेहतर हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे सकते बट अपॉर्चुनिटी बेहतर।
आपको कैसा लगता है और पेरेंट्स बड़ा डिमांड करते हैं
जी?
मैं तो इसका हमें नहीं, बट आप देखिए क्या हो कि अगर हम मिनिमम वेज टीचर्स के लगाते
देखें जी, बात यह है कि ये तो वही बात होगी कि आप एक किस्म का स्टेट स्कूल सिस्टम खड़ा कर रहे हैं तो फिर उसको बेहतर करना है, जो मेरी पहली बात वो तो आपने रूल आउट ही कर
दिया।
तो रूल आउट भी कर देती है, ठीक है ना जी? वो तो फिर आप नेशनलाइज स्कूल्स कह रहे हैं, एक्सेप्ट आप कोई किसी बेवकूफ को कह रहे हैं इसको चलाओ जो सरकारी ना हो, बट फॉर ऑल इफेक्ट्स पर्पसेस पीछे बैठ के एक आदमी डिसाइड करेगा कि टीचर को कितने दे सकते हो उसको, दैट्स द मोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर तो बात आ गई कि पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी कैसे बढ़ा, जिससे मैंने बात शुरू की थी। मैं एक और आपको बात सजेस्ट करता हूँ, आप बताए मेरे दो और मेरी एक सजेशन ये है कि सरकार ऐसी चीजों में घुस रही है जिसमें असल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निगोशिएट होना है पेरेंट्स एज ए ग्रुप के दरमियान और स्कूल के दरमियान, ठीक है जी? वो कॉन्ट्रैक्टिंग का फ्रेमवर्क इस वक्त टूटा। दुनिया भर में अगर आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स देखें उसमें पेरेंट्स का एक कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विद द स्कूल। हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने वो खड़ा ही किया, यानी कि प्रिंसिपल की एक्सेस जो है या डिसीजन मेकिंग फोरम की एक्सेस उसमें स्कूल्स का और स्टूडेंट्स का कोई नुमाइंदगी नहीं। व्हाई कांट यू हैव गवर्नेंस सिस्टम्स दैट आर फोर्स्ड अपॉन प्राइवेट स्कूल्स व्हिच हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पेरेंट्स और जिसके अंदर बच्चों की भी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अलमनस की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि ये जब फीस के ऊपर निगोसिएशन हो रही हो उसके अंदर एक बार्गेन तो शुरू हो। ये क्यों नहीं करवाया जा सकता? बाय द वे गवर्नमेंट अपने स्कूल्स में ये कर रही है थ्रू स्कूल काउंसिल्स, और मैंने सुना है कि उसके कुछ अच्छे बेहतर रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जो मुझे अभी कुछ तहकीकात के बेसिस पर
जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बन गई,
ठीक है जी? अब उसको कैसे डिनाई करना उसकी प्रॉब्लम रहेगी, बट वो तो एक सिंपल सी सोल्यूशन है। ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जी, मतलब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आप नॉन रिस्पॉन्सिबल है, मैं कोर्ट के पास जा रहा हूँ या हुकूमत के पास जा रहा हूँ। Why cannot I change that contracting mechanism to give me a stake in the decision as well? जो कि स्कूल काउंसिल करते हैं, ठीक है जी? तीसरी बात, अगर ये फॉर प्रॉफिट है स्कूल, इनको कहें कि लाइक एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करें ताकि पता लगे एक्सेस प्रॉफिट हो या ना।
तो फिर इनको आप जैसे बैंक्स कौन करते हैं? बैंक्स
रेगुलेटरी निजाम बना दे कि भाई जाना आप मार्केट पे लिस्टिंग करें, ठीक है, ताकि आप ये सब कुछ हो, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए आप प्राइवेट नहीं, आप ये सिर्फ नॉन पब्लिक नहीं रह सकते,
बड़ी अच्छी सजेशन है, बड़ी मजेदार सजेशन है, ऐसे इस पे बहुत अच्छी तहकीक और बहस हो सकती है, और आई थिंक इट बी वेरी फन टू डू दिस, बट लेट्स सो फॉर द फ्यूचर। जो बात सारी आ रही है वो हर जगह आ जाती है, लोगों ने छोटी बात कि क्या हमारे पास कोई इदारा है, आपने जो स्टडी सब कोर्ट किया है बाहर जानी है वो अटैक चलानी है, क्या हमारे पास यहाँ हुकूमत ने कोई एजुकेशन पे चिंता नहीं सेटअप किया हुआ?
मतलब ये रिसर्च जिनको मैंने कोट किया वो तो पाकिस्तान में 10-12 साल से काम कर
रही है, बाहर से सारी फंडिंग। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनाब जो मेरे समझ में आता है, हमने जो बात की भी जो भी सारी बातें करें वो यकीन की बातें
जी
वो होना सीको स्टैंडर्ड कराने के, सीको इन्फॉर्मेशन निकालनी, किसी को इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में नाम चलता है वो ऐसा है कि इम्पैक्ट होता है, जो सिर्फ काम ही ये कर रहा था रोज खरीदना, रोज खरीदना, ये नहीं कि वो कोई नोबेल प्राइज होना चाहिए, हमारे जैसे बंदे बैठे होते हैं जिनको शौक होता है चीजें खरीदने का, वो रोज खरीदते हैं, रोज कोई चीजें निकालते हैं, कोई इधर छोटी सी चीज रिपोर्ट छापते हैं, कोई छोटी सी रिपोर्ट छापते हैं, उस रिपोर्ट की वजह से हुकूमत और पब्लिक के पास बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बेहतर चीजें निकल जाती हैं। जैसे अभी आपने बात चुकी है, अच्छी बात की, मैं उससे बिल्कुल बात करता हूँ कि अगर हम ये कॉलेज को यूनिवर्सिटी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जिससे बहुत कुछ हो सकता है। तो जो रेगुलेशन का असर निज़ाम जो मैं समझा वो एक जस्टिस ब्रेडा सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा था सनलाइट इज द बेस्ट डिसिप्लिन, कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंसी। अगर आप चीजें दिखाते नहीं है तो रेगुलेशन जो अंदर बैठ के पटाखे रेगुलेट करे वो रेगुलेशन नहीं है, असल रेगुलेशन है कि मेरे प्रॉपर्टी राइट सब कुछ आपके सामने पड़े हैं, आपके मेरे सामने पड़े हैं, असल एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन है।
और उसकी एक मैं मिसाल भी देना चाहूँगा, आपने और मैंने ये तहिया किया था कि हम साइट जरूर करेंगे लोगों को जो काम है, मतलब इसमें दो और काम हुए, एक बेसिकली असर की जो रिपोर्ट
थी
उसने ये बाय द वे ये एक चीज की कि रेगुलेशन की और उसका एक इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे, उसको हम क्या पॉलिसी मेकिंग में उस तरह यूज कर सके या नहीं कर सके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा एक दो और इनिशिएटिव लम्स में भी कुछ लोगों ने एजुकेशन पे तहकीक शुरू की और ये फैसले बारी वगैरह ने भी इसके ऊपर किए, तो मेरे ख्याल में वो मशरूम तो कर रहा है बट वो जो रिसर्च और पॉलिसी का नेक्सस है वो जो आप बात कर रहे हैं इसमें थिंक टैंक्स की बहुत जरूरत है और यूनिवर्सिटीज का रोल
है। अपने दफ्तर में बना
उन्होंने मेरे ख्याल में बनाया
अच्छा किया, अगर बना दे और जरूरी उनके दफ्तर है, मतलब
उनका
इंडिपेंडेंट उसका काम ही है वो कि रहते उनके दफ्तर में बाहर है पर उस अटोनोमस को इंडिपेंडेंट जो इन चीजों पे तहकीक करके रोज यहाँ पर मैं एक दफा प्रोग्राम पर एक दफा बात करी, उनका काम ही ये हो कि वो ये चीजें कर रहे हैं और निकाल रहे हैं और छाप रहे हैं।
बिल्कुल
देखें जी वो जो फैसल का काम है या असम खाजा का काम है ये वो हाँ वो एंकर हो जाता है यासर का है वो एंकर हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ इस मुल्क जो काम है वो कहीं ना कहीं एंकर होता है
जरूर,
अगर एंकर होगा तो इफेक्टिव होगा, वरना ये रिपोर्टें हवा में रह जाती है, सिर्फ आप और मैं जानते हैं बाकी लोग भी
नहीं,
ये मतलब
बिल्कुल
जितना अच्छा
हो। और मेरा ख्याल में एक और है कि ये जो ये इस किस्म का काम निकले इस पे मीडिया को भी बहुत सीरियसली
जो अगर थिंक टैंक वो उसके पास जाएंगे जब ये निकला है तो अब वो तो ढूंढते फिरते हैं ना
बेचारे। लेकिन आप जितनी रिपोर्टिंग देखें इसमें जो आपने और मैंने बात की ये इन्हीं काम के बेसिस पे की, मीडिया में ये बहस नहीं हुई।
नहीं बट वो पता नहीं है ना मीडिया उनके पास चार हेड होते
हैं अब उनको जरा चेक कर
और उनको नॉलेज भी नहीं था ना उनको असम खाजा का काम
था बेचारे ठीक है ना कार्ड हम बता
रहे हैं वो उनको पता चलेगा अगर वो ऐसी चीजें मौजूद हो।
हाँ
तो हम तो बड़ी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं
ठीक
मैं कर रहा हूँ
आई
ये भी ऐसी चीज बनाए नॉट ओनली एजुकेशन मेरा ख्याल हेल्थ भी होना चाहिए जी
चलिए मैं सरकार के अंदर एक थिंक टैंक होना चाहिए इन एरियाज पे जो काम जो जो के बारे में था मतलब सरकार के बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक अच्छा दूसरी मैं बात कर रहा चाहूँ जो पेरेंट्स और ये मैं एज अ पेरेंट भी ये बात कर रहा हूँ। देखें पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ हमारा इश्यू जो है वो फी का है या हम फी और क्वालिटी के ट्रेड ऑफ पे कोई डिसीजन
बहुत इम्पोर्टेंट बात
ठीक है ना सरकार को नहीं मैं एज अ पेरेंट भी अपने
अल्टीमेटली मेरे बच्चे की जो आदत है मेरे बच्चे की सारी फ्यूचर ठीक है ना जी पढ़ना तो उसने 20 साल की उम्र तक है पर काम तो 60-70 साल की उम्र तक है 50 साल की आमदनी उसकी इस स्कूल पे डिपेंड
करती है। एब्सोल्युटली अब पेरेंट्स का पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ अपर मिडिल क्लास और जो आपका
पढ़े लिखे
पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिकॉज जो बेचारा इनकम के अनसर्टेनिटी के बोझ में दबा हुआ है, वो बेचारा तो ऑब्वियसली प्राइस बचाने के चक्कर में होगा ना जी, बिकॉज उसके लिए तो एक बहुत बड़ी सो उधर तो हमें और मैकेनिज्म्स का सोच, बट जिनकी एक अफोर्डेबिलिटी है और जो पढ़ा लिखा है वो क्यों क्वालिटी को इस मुल्क में हर वक्त कहता है कि मैंने नहीं सोचना, ठीक है, वो क्यों लॉबी करता है कि जी भाई फी कम कर दें और फिर ये सोचता ही नहीं है कि क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी।
लेकिन प्रोसेस बात की थी पर क्यों हो क्या क्या जल्दी से
बताइए, मतलब मुझे नहीं समझ आता ये मेरा ख्याल में कि ये हमारे अंदर बहुत बड़ा मसला है कि हमें प्राइस क्वालिटी ट्रेड ऑफ्स को समझना है, और दूसरी ये बात है हमने डिसाइड करना है कि हमने स्टेटस पे बच्चों को डालना है या परफॉर्मेंस पे बच्चों को, स्कूल के स्टेटस पे डालना है या परफॉर्मेंस पे डालना। अगर मैंने स्कूल के स्टेटस पे अपने बच्चे को डालना है तो मेरी पोजीशन ये है एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट कि वो जितना मर्जी पैसा आपसे चार्ज ले, आप स्टेटस लेना चाहते हैं वो बेचना चाहता है वो प्राइस करता है, स्टेटस को आप खरीदते हैं दे वो आपको जितना मर्जी प्राइस करता है, आपका मसला है उसका मसला है। अगर आप बेसिकली परफॉर्मेंस को देखते हैं राइट, तो वो एक अलग चीज, उस पर हम बात कर सकते।
तो एक और सोसाइटी में जब बच्चा निकल आता है स्कूल से तो उसका करियर जो है जैसे अमरीका में बड़ा सिंपल है, अमरीका में बड़ा सिंपल है कि अगर वो बड़ा अच्छी सी जमीन है, गाड़ी का अच्छी है, सब कुछ करते हो माशाला बिल गेट्स बन जाएगा, स्टीव जॉब्स भी बन जाएगा, कुछ नहीं करते। यहाँ तो अभी अगर कि अगर उसकी जान पहचान नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो जहाँ से पढ़ा होगा वो बेचारा कहीं कहाँ जाएगा, तो ये तो पूरे निज़ाम की बात आ रही
है। अच्छा आप भी एक बात करने से पहले चले जाएं कि उसको एक तरह का हम समाप्त करते हैं कि देखें हम जो बात कह रहे हैं कि ये कि बात हम ये कह रहे हैं कि एक पेरेंटल चॉइस एक्सपैंड कर गई है बिकॉज एक लेवल ऑफ फी पे भी ज्यादा स्कूल लोगों के पास अवेलेबल है और डिफरेंट लेवल के भी फी स्कूल अवेलेबल है, उस मैकेनिज्म को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं कंपेरेटिव मैकेनिज्म। तो एक जगह हमारी एग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट हमारी ये है कि जहां पे हम पेरेंटल चॉइस को बेहतर करके कंपेटिटिव प्रेशर को अनलीश करके क्वालिटी और प्राइस के मार्जिन को अलाइन कर सकते हैं वो हमें मैकेनिज्म डेफिनेटली यूज करना चाहिए। उसके अंदर एक आ गया रेटिंग का सिस्टम, एक आ गया बेसिकली हमने ये बात की कि जो पेरेंट्स की गवर्नेंस का सिस्टम है कि उनको तो सरकार को लेकर बीच में लेके। उसके बाद हमारा जो दूसरी जिसपे थोड़ा इख्तलाफ था, बिकॉज आप इन प्रिंसिपल इख्तलाफ नहीं था, आपके ख्याल था वो करना बहुत मुश्किल है कि एक्सेस बेहतर करने के लिए मेरे लिहाज से दो चीज़ें आपको फंक्शन करनी पड़ेंगी, एक तो स्कॉलरशिप्स का निज़ाम, ये बात आपकी ठीक है, उसका डिज़ाइन ट्रिकी होगा, दूसरा है कि आपको पब्लिक सेक्टर में कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाने पड़ेंगे जो कि लो फी पे
कम सेंटर सेक्टर स्कूल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होना पड़ेगा, वो उसमें उसमें
उसमें असर कहेंगे सब कुछ वही बनता है, लेकिन ये इंसान एक पैदा होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जैसे ब्लैंक स्लेट, ठीक है ना, उसको एक इंसान बनाने के लिए कम से कम 20 साल परवरिश करना, परवरिश से एजुकेशन और तो कुछ नहीं होती है, परवरिश से एजुकेशन, उसको खाना पीना है, खाने से सिर्फ ना सिर्फ खाना सिखाना पड़ता है, उसको चलना सिखाना पड़ता है, उसको आगे सब कुछ है, तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर हम माशाल्लाह बहुत काम करेंगे, बट आज जो डिस्कशन है आई थिंक मुझे तो बड़ा ही मजा आया।
और एक आखिरी
इसमें आप लोगों की बात जरूर, हाँ मुझे इतना मजा आया बिकॉज मैं एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा
हूँ,
आई होप के कोई कॉन्वर्स बिकॉज इस डिस्कशन में असल एजुकेशन का मतलब ये है कि हम ऐसे लाइव एग्जांपल से स्टूडेंट्स को चैलेंज
करें। अब आप ही दो बातें उसमें समरी तो हमने दे दी, वो ये थी कि जब ये जो हम रेटिंग का सिस्टम ये कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का सिस्टम, इसका इसका हमें इससे एक फायदा ये होगा, हमें ये भी पता लगना शुरू करेगा कि मार्केट कितनी अच्छी तरह काम करे, यानी कि इसमें फी की चॉइसेस हैं कितनी, हो सकता है हम देखें कि बहुत कम है जो आप बात कर रहे थे डिस्क्लोजर की, और हो सकता है कि हमें पता लगे कि जी कुछ तो बहुत अच्छे स्कूल हैं और उनकी फी भी ज्यादा है, और फिर जो बाकी हैं वो फी कम रखते हैं क्वालिटी भी ज्यादा है, तो वो एक किस्म का प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, वो हमें समझ आनी शुरू होगी तो हम इतनी रेगुलेशन बेहतर कर सकते। लेकिन आखिरी ये बात है जिस पे मेरा ख्याल में मैं खत्म करना चाहूंगा, फिर मैं आपका कमेंट। मेरे लिहाज से जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि एक मार्केट सिस्टम में क्वालिटी और प्राइस के ट्रेड ऑफ को आप कैसे मैनेज करते हैं और आप एक ऐसा आउटकम कैसे लेके आते हैं कि प्राइस जो है वो एक्सेसिव ना हो और क्वालिटी बेहतर। मेरी कंक्लूजन ये है कि ये फी कैपिंग से वो बिल्कुल शायद एडवर्स इफेक्ट,
वो तो गलत हो जाए, बिल्कुल सही है
वो। इस जो इतनी हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं वो ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है कि जी हमने आके फी कैप कर दी। वो बच्चा जो पहले ही इन स्कूलों में नहीं है उसको कोई फायदा नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है वो अभी भी अफोर्ड कर सकता है, उसको आपने थोड़ा पेरेंट को प्रीमियम दे दिया। मार्जिनल पेरेंट को अफेक्ट है उसको आप स्कॉलरशिप के थ्रू एड्रेस कर सकते थे। और जो क्वालिटी ट्रेड ऑफ है प्राइस का जो हमें पता है बहुत सवेर होता है मार्केट, वो हमने उसकी तहकीक ही नहीं की। कोई फिगर नहीं दे सकता कि मुझे बताओ क्वालिटी ट्रेड ऑफ। और ये आप और मैं दोनों इस पे एग्री करेंगे, अगर कोई कहता है कि इस लॉ का क्वालिटी ट्रेड ऑफ जीरो है तो उसका मतलब
ये तो क्वालिटी गिरा है।
देखिए की मतलब आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह इस नोट पे खत्म करते हैं कि हमारी हुकूमत एक ही तरीका आता है, वो सीखे हुए हैं एग्रीकल्चर मार्केट से 100 साल से, वो एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी बनाई हुई है। कल भी आपने देखा वायु से पाद विनाश कर दाल की कीमत नहीं बढ़ सकती, ठीक हो उन्होंने अनाउंस कर दिया हम लोग दाल मिल जाएंगे, हमें तो मैंने की महंगी कोई बात नहीं, वो तो ट्रेडर अपना ट्रेडर किस तरह रोक सकते हैं। उन्होंने डीसीओ की कमेटी बनाई हुई है, उसी तरह और एजुकेशन को भी उन्होंने एग्रीकल्चर के हवाले से ट्रीट किया कि बस कीमत लगा दो अनाउंस कर दो अब सब कुछ हो गया मामला खत्म हो गया। पर जो आपकी सजेशन है जो ना हुकूमत को बड़े माना अंदाज पेश कि खुदा रहा जो आंसर है वो तहकीक कराएगा और इनको चाहिए कि अपने तहकीकी इदारे मजबूत करें, इनको चाहिए आपने बड़ी अच्छी बातें की है अपनी खजा की तहकीक अपना की तहकीक असर की तहकीक लम्स की तहकीक तहकीक मौजूद है, पर हुकूमत को इन तहकीकों को ऑन करने के लिए समझने के लिए अपना एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा। वो थिंक टैंक एंकर करेगा इन चीज़ों को, वो थिंक टैंक जैसे अमरीका में फेमस है इन चीज़ों को एंकर करती है चीज़ों को, वो एक रिसर्च को लेके आती है एक दरवाजा बनती है हुकूमत रिसर्च को लेकर, और वो फिर जब ऐसे मसले आते हैं तो वो सोच के और तहकीक के बेसिस पे रिकमेंडेशन देती है, उससे फिर कोई माशाल्लाह फिरमंदी वाली सोल्यूशन आती है। अब एग्रीकल्चर हर जगह उसका निज़ाम लगा देना तो सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए अली बहुत बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू, इंशाल्लाह वी टेक अप योर पब्लिक एजुकेशन, आई डोंट नीड टू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बट उसको सेपरेट करते वो भी ना करते 4 घंटे हो
जाते हैं।
थैंक यू जी।
सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।